हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 34 एंड 35। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानु सुते देवी, प्रणमामि हरिते। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक संख्या 34। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
शिबिराय निनिषन्तं रज्जवाभद्वारि पुंबला,
प्राहार्जुनम् प्रकुपितो भगवान्नम् भुजेक्षणम् शिबिराय निनिशन्तम् रज्जवाभत्वा रिपुम्बलात् प्राहार्जुनम् प्रकुपितो भगवानं 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 भुजेक्षणम् शब्दों का अर्थ शिबिराय खेमे में निनिशन्तम् लाते हुए रज्जवा रस्मियों से बद्धवा बंधा हुआ रिपुम शत्रु को बलात् बलपूर्वक प्राहा कहा अर्जुन अर्जुन से प्रकुपितो क्रुद्ध भगवान ने अम्बुजक्षण अर्थात अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले। अनुवाद अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सैनिक खेमे की ओर ले जाना चाह रहा था और अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोले के समान थीं, तो भगवान की आंखें कैसी थी? कमलवत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसा नहीं है। भगवान ब्रह्म है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है, जो प्रकृति के गुणों के आश्रित होता है। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब ब्रह्मास्त्र की दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और तीनों लोकों में अग्नि भड़क उठी और सारे लोकों के समस्त जीव व्याकुल हो गए, तो भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया दोनों अस्त्रों को। मतम से वासुदेवस्य संजाह अर्जुनो द्वयम्, दोनों अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शमन कर दिया क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा। उसके बाद क्या किया, तथा असाध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्ष। यहाँ पर आमर्षताम राक्ष जो लिखा हुआ है, अमर्ष का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, और ताम्र मणि के लाल लाल जो तपता हुआ तांबे का रंग होता है ना, ऐसी भड़कती हुई आंखें थी उसकी, और किसकी, अर्जुन की। और उसने क्या किया, पशुम रचनाया था और रस्सियों से अश्वत्थामा को जानवर की तरह बांध लिया, और बांध कर उसको कहाँ लेकर आए, शिबिराय निनिशंतम, जो उनके खेमे लगे हुए थे ना टेंट, उनमें लेकर आए। रस्सियों से बंधे हुए थे रज्जवा भद्वा रिपुम बलात्, उनको बहुत ज्यादा बल पूर्वक, यानी कि उस शत्रु को, रिपु कहते हैं शत्रु को, बहुत बल पूर्वक अपने खेमे में लेकर आए। और जब वो खेमे में लेकर आए, उस समय उनके साथ और कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा वो लेकर आए, तब प्राहर्जुनम प्रकुपित, अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में था। और यहाँ पर कृष्ण को भी क्रोधित ही बताया गया, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी बात बताई गई है भगवान के नेत्रों के विषय में। भगवान नम विजेक्षण, पहले अर्जुन के नेत्रों की जब बात की गई तो उसको क्या कहा गया, ताम्राक्ष, कि लोहे तांबे की तरह लाल लाल तप्त गोले। और भगवान के नेत्रों को क्या कहा गया, अम्बुज क्षण। अम्बुज कहते हैं लोटस फ्लावर होता है ना, जो कमल का फूल, उसकी जैसी भगवान की नेत्र। वास्तव में भगवान के शरीर के समस्त अंगों को कमल से सुशोभित किया जाता है। जैसे भगवान के चरण कमलों को चरण कमल कहते हैं, भगवान के हाथों को कर कमल बोलते हैं या हस्त कमल बोलते हैं, भगवान के नेत्रों को नेत्र कमल बोलते हैं, भगवान की नाभ को पद्मनाभ, क्योंकि वहां से पद्म का फ्लावर निकलता है इसलिए पद्मनाभ कहा जाता है, और भगवान के फेस को मुख कमल कहा जाता है, क्योंकि कमल का पुष्प जो है वो बहुत ही सुंदर होता है, सुगंधित होता है, पवित्र होता है, और पवित्र जलाशय में होता है। तो वैसे तो भगवान के साथ किसी की उपमा देना, मतलब भगवान के अंदर इतनी सुंदरता है, इतने भगवान विलक्षण हैं कि अगर किसी के साथ उपमा देते हैं तो वस्तु जो है वो खुद शर्म, उसको खुद शर्म आ रही होती कि कहाँ भगवान की सुंदरता और कहाँ उसकी उपमा मुझसे दी जा रही है। चाहे भगवान की नेत्रों की या किसी की उपमा जब किसी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती है जो कि भगवान के साथ कंपेयर कर। भगवान खुद कहते हैं यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्चितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। 10.42 में भगवान ने कहा कि संसार में तुमने जो कुछ भी सुंदर देखा है, जो कुछ भी प्रेम करने योग्य है, जो कुछ देखने योग्य है, वो सब क्या है, मेरे अलौकिक तेज की एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा अंश है, क्या बराबरी। तो इस छोटे से अंश के साथ उस पूर्ण की क्या बराबरी की जा सकती। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो दिव्य शब्द नहीं है जिससे हम भगवान के सौंदर्य का या भगवान के रूप का किसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि हमारे पास इतने हमारे शब्द इतने प्रेशियस नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूत गोस्वामी हमें भगवान के नेत्रों को कमल के सदृश बताकर ऐसे बता रहे हैं कि भले। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक अत्यंत ही सुंदर बात बताई है कि जैसे कि भगवान के नेत्रों के विषय में बताने से ही पता चल जाता है कि भगवान उस प्रकार के क्रोधित नहीं थे जैसे कि अर्जुन थे, यानी कि जैसा यहाँ के संसार के जो जीव होते हैं उनका क्रोध कैसा होता है, प्रकृति के गुणों के आश्रित होता है। यानी क्रोध किस चीज का होता है, यदि कोई तमोगुण में आता है या रजोगुण के कारण, जैसे भगवान बोलते हैं कि क्रोधात ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है, और भगवान बताते हैं कि क्रोध तो नरक का द्वार है, लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया है, जो भगवान के क्रोध की जो बताए यहाँ पर बात बताई जा रही है, वो ऐसा हम लोगों की तरह जैसे हम साधारण जीवों को बद्ध जीवों को क्रोध आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान संपूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णांत पूर्णमुदेच्यते, भगवान को कोई ऐसी इच्छा ही नहीं होती है जिसके ना पूरा करने के कारण उनको क्रोध आए। भगवान की समस्त इच्छाएं संपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई इच्छा अधूरी रह सकती है या इस तरह। अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। भगवान यदि किसी का क्रोध भी करते हैं तो केवल और केवल कृपा, भगवान के पास यदि जीवों को कुछ देने के लिए है तो केवल कृपा। तो भगवान यदि किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो वो भी उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो रजोगुण के कारण या तमोगुण के कारण क्रोधित हुए हैं, यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है। केवल क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं तो भक्तों के हितकारी होने के कारण उन पे क्रोध करते हैं, जो उनके भक्तों के को कष्ट देते हैं, जो भगवान के भक्तों को कष्ट दे रहे होते हैं या किसी तरह से उनका हित करते हैं, भगवान उन पे बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जानते हैं ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, चाहे वो मेरा भक्त हो या मेरे भक्त का शत्रु हो, वो तो मेरा ही अंश है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। दृष्टि तो भगवान की, भले भगवान की दिव्य दृष्टि है, यदि रावण पे पड़ जाए, कंस पे पड़ जाए, अश्वत्थामा पर पड़ जाए, किसी के ऊपर भी पड़ जाए, लेकिन भगवान की दिव्य दृष्टि यदि किसी के ऊपर पड़ी है तो उसका कल्याण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया, अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है, वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान कभी किसी के लिए अहित नहीं हो सकता भगवान के कारण। भगवान जो भी करते हैं अवश्य उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई भलाई होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं समस्त जीवों के लिए एक जैसा हूँ, किसी से ना तो मैं किसी का पक्षपात करता हूँ और ना ही किसी से मैं दुश्मनी करता हूँ, ना ही कोई मेरा प्रिय है और ना ही अप्रिय है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है, ये भजन्ते तुमाम भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का भजन करते हैं भगवान उनको अपनी जात जैसा समझते हैं, अपने माने उनका दुख सुख अपना दुख सुख, उनका क्रोध। अब अर्जुन के पुत्रों की हत्या हुई है तो भगवान को ऐसा लग रहा है जैसे उसका दुख मेरा दुख है, तो भगवान क्योंकि अर्जुन क्रोधित हैं उसी तरह से भगवान भी क्रोधित हैं। लेकिन भले ही भगवान इस समय क्रोधित हैं लेकिन फिर भी उनके नेत्र कैसे हैं, भगवान अम्बुजे क्षण, उनके नेत्र कमल के सदृश हैं, यानी कि भगवान जिन पर भी अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे, चाहे क्रोध से डालें या प्रेम से, वो जो जिस पर भगवान की दिव्य दृष्टि आई है वो अवश्य धन्य हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं प्राहार्जुनम प्रकुपितो, प्राहार्जुनम यानी कि अर्जुन को कहा भगवान अम्बुजे क्षण, भगवान ने कमल नेत्रों से देखते हुए ऐसा कहा, तो भगवान ने क्या कहा वो हम श्लोक नंबर 35 में पढ़ते हैं, कृपया मेरे साथ रिसाइट कीजिए। मैनम पार्थार हसी प्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमम् जहि यो सावनागमसः सुप्तान् अवदीन्निषि बालकान् मैनम् पाठार्हसि ध्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमम् जहि यो सावनागम यो सावन गसह सुप्तान् अवदिन्निषि बालकान् मैनम् पाठार्हसि त्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमम् जहि यो सावनागसह सुप्तान् अवदीन्निषि बालकान् मैनम् पाठार्हसि त्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमम् जहि यो सावनागसह सुप्तान् अवदीन्निषि बालकान् मैनम् पाठार्हसि त्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमम् जहि यो सावनागसः सुप्तान् अवदीन्निषि बालकान् शब्दकात् मैनम् उसके प्रति कभी नहीं पार्थ हे अर्जुन अरहसी तुम्हें चाहिए त्रातुम मुक्त करना ब्रह्मबन्धुम ब्राह्मण के संबंधी को इमम इस जही मार डालो यह जो असौ उन अनागसह दोष रहित सुप्तान सोए हुए अवधीन मार डाला निशि रात्रि में बालकान बालकों को। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध कर दिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने का पात्र नहीं होता उसे ब्रह्म बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र कभी भी न्यायाधीश नहीं होता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का संबंधी कहने में कोई हर्ष नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन के द्वारा न्यायाधीश नहीं हो जाता उसी प्रकार कोई जन से ब्राह्मण नहीं होता अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद योग्य पुरुष के लिए होता है उसी प्रकार ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्र का आदेश है कि यदि अन्य कुल में भी उत्पन्न पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति ब्राह्मण गुण से शून्य होते हैं तो उन्हें ब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे सॉरी तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोकों में बताने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य में ब्रह्म बंधु शब्द की व्याख्या की। जैसे पहली लाइन में कहा गया भगवान कहते हैं मैनम पार्थार हसी त्रातुम ब्रह्म बंधु एवं जही कि ये जो ब्रह्म बंधु है ये कोई ब्राह्मण नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये ब्राह्मण है तो तुम्हें अगर इसकी हत्या करोगे तो तुम्हें ब्राह्मण हत्या का अपराध लगेगा। ये कोई ना ये तो एकदम साधारण व्यक्ति है। इसने कार्य कैसा किया है ये कोई ब्राह्मण का कार्य होता है। यो सावना गसह सुप्तान अवधि निशी बालकान, सोए हुए बालकों को, जब भी बालक होते हैं वो तो जागे हुए हों तो उनकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो सोए हुए बालकों की हत्या करके आया है तो ये तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको क्या कहा है, ब्रह्म बंधु। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे अगर कोई बड़ी अदालत का जज होता है, उसका पुत्र कोई जज नहीं बन जाता है ना, उसके लिए उसको योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, उसी तरह से ब्राह्मण बनने के लिए भी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बताया है 18.42 में। भगवान कहते हैं, श्यामो दम तपः शौचम् क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानं तम आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। कि यदि कोई ब्राह्मण है तो उसके कर्म कैसे होने चाहिए, स्वभाव से उसके कर्म होने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण में होता है और सत्वगुण में रहकर उसे क्या कार्य करने चाहिए। शम का मतलब होता है अपने मन को और दम का मतलब होता है इंद्रियों को, मन को और इंद्रियों को संयमित करने वाला होना चाहिए। जो ब्राह्मण है उसको अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर संयम होता है। शौचम अर्थात पवित्र होना चाहिए, क्षांति सहर्षता होनी चाहिए उसके अंदर, और सत्यनिष्ठा उसके ईमानदार होना चाहिए, सत्य के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए, और ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, विज्ञान के साथ कार्य करे। आस्तिक्यम का मतलब होता है धार्मिकता, उसके अंदर आस्तिक उस शास्त्रों में जो बात लिखी गई है वेदों में उसे पूरा विश्वास होना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य है क्या, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रहम, और ये यज्ञ करना यज्ञ कराना, शास्त्र अध्ययन करना, दूसरों को दान देना दान लेना, और ये सब ब्राह्मण के कार्य होते हैं। ब्राह्मण का कार्य ये नहीं होता है कि बैठ के किसी सोए हुए बच्चों की हत्या करें। इवन जो देश के मुजरिम होते हैं ना, उनको भी ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए। जो राक्षस होते हैं उनके साथ भी ब्राह्मण जो है उसका कर्तव्य नहीं है कि वो उनके साथ युद्ध करे। ब्राह्मण का कर्तव्य ही नहीं है कि वो किसी की हत्या करे, ये तो क्षत्रिय का कार्य होता है। इवन अगर ब्राह्मण जो होते हैं उनको कोई तंग भी करता है ना, उनको अगर कोई राक्षस डिस्टर्ब भी करता है तो भी वो उनका क्या कर्तव्य है। हालांकि ब्राह्मण के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, वो ब्राह्मण बहुत कुछ कर सकता है, उसका वध भी कर सकता है राक्षसों का। लेकिन जैसे हम देखते हैं रामायण में, विश्वामित्र जो है वो उनको सारे तारिका और ये सुबाहु ये इत्यादि जितने भी राक्षस थे वो बहुत तंग कर रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्होंने खुद उनको, हालांकि वो कर सकते थे, विश्वामित्र कोई साधारण ब्रह्म ऋषि नहीं थे, लेकिन फिर भी हालांकि वो पहले क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ब्राह्मण पद को स्वीकार किया था तब उन्होंने उनकी हत्या नहीं की, बल्कि क्या किया, वो महाराजा धृतराष्ट्र के पास गए, सॉरी महाराजा दशरथ के पास गए और कहा कि मुझे आपके इन दोनों पुत्रों को, श्री राम को मेरे साथ भेजो, क्योंकि वो राक्षस बहुत ज्यादा ऐसा आपदाएं भेजते हैं और यज्ञ करने नहीं देते, भक्तों जो ब्राह्मण हैं उनके यज्ञों को डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं, तो आप अपने पुत्रों को भेजिए। यानी कि ब्राह्मण का ये कार्य नहीं होता है कि वो यहाँ पर कोई भी किसी की भी हत्या करे, लेकिन क्योंकि अश्वत्थामा ने ऐसा किया था तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मैनम पार्थार हसित्रातम, उसके ऊपर दया मत दिखाना, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधुम इमम जही, इसको तो मार डालो। जही का मतलब होता है कि इसको मार डालो, क्यों, क्योंकि इसने सोए हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म हत्या करने का कह रहे हैं, भले ही वो ब्राह्मण जो था वो तो अपने कार्य सही नहीं किए उसने, लेकिन अर्जुन को भगवान क्या ब्रह्म हत्या करने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। भगवान संपूर्ण जीवों के, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो उनका हर कार्य सबके लिए कृपा का पात्र, वो सब सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो वो अपने मित्र को, जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती, तुम ना केवल मेरे भक्त हो बल्कि मेरे मित्र हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो क्या उनको, अर्जुन को कोई ऐसा कार्य करने के लिए भगवान कह सकते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए? वो परम गुरु हैं, वो कभी कोई ऐसी शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कभी किसी को कोई ऐसी शिक्षा दे नहीं सकते जिससे किसी का भी अहित हो, तो वो अपने दोस्त को ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सब क्वेश्चंस का, इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे देंगे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ये बात याद रखनी है कि भले ही ब्राह्मण अपना कार्य सही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कभी भी उनके साथ ऐसा बर्ताव, यानी कि हम साधारण जीव है ना, अर्जुन की बात अलग है, वो क्षत्रिय है, तो इसलिए वो ऐसा कार्य, जो भी कार्य भगवान के आदेशों के अनुसार करेंगे तो करेंगे, लेकिन अगर आज हमारे सामने कोई ऐसा ब्राह्मण आता भी है जो कि अपने कार्य पूरे नहीं कर रहा है, तो भी हमें उनका आदर करना पड़ेगा, भले ही हम उनकी बात नहीं मानते हैं, एक साधारण व्यक्ति का भी हमें, क्योंकि भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अपने आप को कभी भी सम्मान, अपने लिए सम्मान की इच्छा मत करो और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करो, तो ब्राह्मण भी तो ऐसे ही है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो आगे भगवान क्या कहते हैं 36 में, भगवान कहते हैं मतम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुंहन्ति धर्मवित् मतम मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुंहन्ति धर्मवित् मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुंहन्ति धर्मवित् मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुंहन्ति धर्मवित्। शब्दों का अर्थ मत्तम अर्थात लापरवाह को, प्रमत्तम अर्थात नशे में रहने वाले को, उन्मत्तम अर्थात पागल को, सुप्तम अर्थात सोए हुए को, बालम अर्थात बालक को, स्त्रियम अर्थात स्त्रियों को, जड़म अर्थात मूर्ख को, प्रपन्नम अर्थात शरणागत को, विरथम अर्थात रथ विहीन को, भीतम अर्थात भयभीत को, नहीं रिपुम यानी शत्रु को, हंतिम मारते हैं, धर्मवित अर्थात धर्म के नियमों के ज्ञाता। अनुवाद, धर्म का ज्ञाता ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करता जो लापरवाह, नशे में मस्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो, ना ही वह बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी, शरणागत व्यक्ति का वध करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसा शत्रु नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध ना करे। पहले धर्म के सिद्धांतों के आधार पर युद्ध लड़े जाते थे, किसी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी नहीं मारना चाहिए। धर्म युद्ध के ये कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनीतिक नेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि इस ये धर्म का ज्ञाता यहाँ पर धर्मवित कहा गया है ना, वो भी ब्राह्मण को कहते हैं क्योंकि धर्म का उसको ज्ञान होना चाहिए जो ब्राह्मण है। तो वो अगर ब्राह्मण है तो उसको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। और क्या धर्म क्या कहता है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, के जो पागल हो गया है, लापरवाह है, नशे में है, सोया हुआ है, बालक है, स्त्री है और शरणागत हो जाए या फिर रथविहीन प्रपन्नम यानी कि आपके शरण में आ जाए, विरथम यानी कि आपके वो उसके पास रथ नहीं हो, भीतम यानी बहुत ज्यादा भयभीत हो, ऐसे शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया है, सोए हुए बालकों का वध किया है, तो फिर उसके ऊपर तुम्हें कृपा नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताए कि आज जो युद्ध होता है तो वो केवल और केवल क्यों हो रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए युद्ध होता है। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनीतिक नेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। जैसे फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, भगवान ने वो क्यों कराया था, भगवान ने अर्जुन को कहा था युद्धाय कृतनिश्चय, तुम्हें युद्ध करना चाहिए युद्ध। तो भगवान ने पहले ही, यदि हम महाभारत को गौर से देखेंगे तो भगवान ने पहले ही अर्जुन और समस्त पांडवों को बताया था ये युद्ध इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम लोगों को राज्य प्राप्त हो, इसलिए नहीं किया जा रहा है ये युद्ध, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अधर्म का नाश होना चाहिए। अधर्म का नाश होगा तभी तो धर्म की स्थापना होगी। भगवान इस युद्ध के द्वारा, ये क्योंकि अर्जुन का अपमान हुआ था या पांडवों का अपमान हुआ था या द्रौपदी का अपमान हुआ था, इसलिए युद्ध नहीं हो रहा था। ये युद्ध इसलिए हो रहा था कि यदि यह युद्ध नहीं होता तो संसार में केवल अधर्म का राज हो जाता। इसलिए भगवान ने तो हर तरीके से पहले सुझाव दिया, यहाँ तक कि शांति दूत भी बनकर चले गए। कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, श्रीमद् भगवत गीता में भी ना यही बताया कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, लेकिन भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बताया परित्राण आय साधो नाम विनाशाय ते दुष्कृताम, मेरे संसार में आने का यही तो मुख्य कारण है, धर्म संस्थापनार्थ आय संभवामी युगे युगे, कि मैं आऊं और धर्म की स्थापना करूं, जो अधर्मी है उनका विनाश होगा तभी तो धर्म की स्थापना होगी। तो ये जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध था, उसको धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथित्व स्वीकार किया था, उसी समय जिस साइड पर भगवान थे उसी साइड पर धर्म था, और जिस साइड पर भगवान है उसी साइड पर, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था और संजय ने ये घोषणा कर दी थी, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि जिस समय अब पार्थ धनुर्धरा लिखा गया, कि जिस समय अर्जुन जैसा भगवान का भक्त जो धनुष धारण करता है भगवान की आज्ञा से, पहले अध्याय में जब हम देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन ने क्या किया था, अपना धनुष बाण रख दिया था और बैठ गया था रथ पर। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि धर्म के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो और इन अधर्मियों का तुम्हें नाश करना है, तभी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाचित करिष्ये वचनम तव, अभी मैं वही कार्य करूंगा जो कि आप कहोगे। अब अर्जुन पहले अपनी इच्छा क्या थी, अर्जुन की अपनी इच्छा तो थी नहीं ना युद्ध करने की, पहले ही मना कर दिया, मैं योत्सम इति गोविंदम, कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, वापस बोला ना योत्सम मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये किसकी इच्छा थी, अर्जुन की इच्छा थी। और फिर अंत में अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, अब मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, अब मैं क्योंकि आपका अंश हूँ आपका सेवक हूँ तो केवल आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो भी कार्य आप कर रहे हैं यदि वो भगवान की आज्ञा है तो फिर उसमें कभी भी अपराध नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, कि देख के तू ये क्या करता है। अब जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको तुम्हें, ये ब्रह्म बंधु है, इसको छोड़ना नहीं है, तुमको इसको मारना है, क्योंकि इसने ऐसा कार्य किया है, सोते हुए बालकों की हत्या की है, तो इसको छोड़ो नहीं, तुम इस पे कोई भी दया नहीं दिखाओ। अब देखते हैं आगे अर्जुन का क्या उत्तर होता है और इस द्रोण पुत्र को किस तरह से दंड दिया जाता है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा को और अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।